नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से पश्चिम एशिया संघर्ष पर साझा चिंताओं पर चर्चा की। संवाद और कूटनीति से समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर ईरान और ओमान के विदेश मंत्रियों से बातचीत की। 11वें रायसीना डायलॉग का नई दिल्ली में शुभारंभ। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सांडर स्तूब ने कहा, भारत भविष्य में विश्व व्यवस्था तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेपाल में आम चुनाव के लिए मतदान के बाद मतगणना शुरू। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर अपनी साझा चिंताओं और संवाद तथा कूटनीति से समाधान की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए घनिष्ठ सहयोग और समन्वय जारी रखेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से बातचीत की। उन्होंने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद बिन हमूद अल बुसैदी से भी चर्चा की। कई देशों के शामिल होने के साथ पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष तेज हो गया है। अमरीका और इसराइल ईरान पर हवाई हमले कर रहे हैं और ईरान मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान समर्थित हिजबुल्ला भी ईरान के साथ हमलों में शामिल हो गया है। क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए इसे खतरा बताते हुए कई देश चिंता व्यक्त करने के साथ स्थिति को शांत करने का आह्वान कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
अज़रबैजान ने आज नक्शिवान शहर और हवाई अड्डे पर ईरान के ड्रोन हमले की कड़ी आलोचना की है। ईरान ने इन हमलों से इनकार किया है। कतर ने भी ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाया है। सऊदी अरब ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने कई ड्रोन नष्ट कर दिए। संयुक्त अरब अमीरात ने भी दावा किया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों और 131 ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि ईरान ने इसराइल पर खुर्रम शहर 4 मिसाइल से हमला किया। ईरान ने बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात पर भी हमले के दावे किए हैं। आज सुबह ईरान ने इसराइल और अमेरिका पर फिर हमले किए। इस बीच ईरान ने इसराइल के दिमोना परमाणु संयंत्र को निशाना बनाने की भी धमकी दी है। दूसरी ओर इसराइली सेना ने लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्ला के कई कमांड केंद्रों पर लक्षित हमले किए। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हो गई है। इसे देखते हुए फ्रांस, इटली और ग्रीस साइप्रस तथा पूर्वी भूमध्य सागर में सैन्य तैनाती पर सहमत हो गए हैं। तीनों देश लाल सागर में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सरगेई लाफ्रोव ने कहा कि रूस, अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य अभियान को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि रूस सैन्य तनाव को रोकने के लिए क्षेत्रीय देशों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ बातचीत जारी रखेगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
श्रीलंका के विदेश मंत्री विजीता हैरात ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ हुई चर्चा में पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष पर चिंता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री हैरात ने कहा कि श्रीलंका संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से संवाद और शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करता है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज दिल्ली में ईरानी दूतावास में भारत सरकार की ओर से शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। श्री मिश्री ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के निधन पर शोक व्यक्त किया। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच सतर्क और शांत रहने, अधिकारियों के सुरक्षा दिशा निर्देशों और परामर्श का पालन करने की सलाह दी है। असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए हवाई क्षेत्र और नियमित निर्धारित उड़ान संचालन अस्थायी रूप से निलंबित है। हालांकि भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमानन कंपनियों ने भारत के लिए सीमित गैर निर्धारित उड़ान संचालन शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का शुभारंभ किया। मुख्य भाषण देते हुए फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सांडर स्तूब ने कहा कि विकासशील और अल्पविकसित देश ये तय करेंगे कि भविष्य में विश्व व्यवस्था कैसी होगी और इसमें भारत की अहम भूमिका होगी।
भारत एक प्रमुख शक्ति के रूप में ये तय करने में एक महत्वपूर्ण या शायद सर्वोपरि भूमिका निभाएगा कि क्या दुनिया सौदों, लेन देन और हितों के क्षेत्रों में संघर्षपूर्ण बहुव्यवस्था की ओर जाएगी या दुनिया अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, नियमों, मापदंडों पर आधारित एक नई सहकारी, निष्पक्ष और प्रतिनिधि बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था की ओर जाएगी।
श्री स्तूप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि आगामी कुछ दिनों में होने वाली चर्चाएं नई क्षमताओं, प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई सोच पर केंद्रित होंगी।
अगले कुछ दिन में हमारी चर्चा नई क्षमताओं, सैन्य, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, मानव संसाधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा प्रौद्योगिकी के बारे में होगी। ये चर्चा दो नए विचारों, जोखिम लेने की बढ़ती प्रवृत्ति और साथ ही जोखिम कम करने तथा विविधीकरण के बढ़ते संकल्प के बारे में भी होगी।
रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थव्यवस्था पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाली सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
रायसीना डायलॉग भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है, जो साल 2016 से हर वर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन के दौरान 110 देशों के लगभग 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इनमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और पूर्व सरकार के प्रमुख, सांसद, सैन्य कमांडर और उद्योग जगत के प्रमुख लोग शामिल होंगे। संवाद के दौरान प्रतिभागी 6 प्रमुख विषयों पर अलग अलग सत्र में चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन में वैश्विक नेता, नीति निर्माता और विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों और रणनीतिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सांडर स्तूप से मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि रायसीना डायलॉग में श्री स्तूप की उपस्थिति भारत के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने ये भी विश्वास व्यक्त किया कि हाल ही में घोषित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को नई गति प्रदान करेगा। भारत और फिनलैंड के बीच आज नई दिल्ली में पर्यावरण, सहयोग, प्रवासन और आवाजाही तथा सांख्यिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सांडर स्तूप के साथ कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है।
आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप, दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स, अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है।
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि चुनौतियों के बावजूद श्री मोदी भारत में आम लोगों तक कल्याणकारी कार्यक्रम पहुंचाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। श्री कार्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में वित्तीय सुधारों के माध्यम से करोड़ों लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में सफलता हासिल की है। श्री कार्नी ने ये बातें कल सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख विचारक लोवी इंस्टीट्यूट में एक संवाद के दौरान कहीं। नेपाल में आज हुए आम चुनाव के बाद मतगणना जारी है। केपी शर्मा ओली सरकार को गिराने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने भी उत्साहपूर्वक मतदान किया है। एक रिपोर्ट।
नेपाल में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया, जिसमें 60% मतदाताओं ने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया है। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के तहत हुए चुनाव की आज गणना शुरू हो गई है, जिसके परिणाम 24 घंटे के अंदर आने की संभावना है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार दोलखा, सरलाही और रौतहट जिलों में कुछ विवाद सामने आए, लेकिन उन्हें शीघ्र ही सुलझा लिया गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। श्री बोस नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने थे। श्री बोस ने अपने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा है कि वे 3.5 साल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें बताया है कि आरएन रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया है। देश में 10 राज्यों में 37 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा और परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 254 रन का लक्ष्य दिया है। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 253 रन बनाए। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में कल न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया था। फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज जोरदार उछाल आया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 900 अंक बढ़कर 80,016 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 285 अंक की बढ़त के साथ 24,766 पर स्थिर हुआ। आज विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 54 पैसे मजबूत होकर 91.60 रूपए पर बंद हुआ।
मौसम विभाग ने बताया है कि कोंकण और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा। इस सप्ताह उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। इसके अतिरिक्त अगले 4 दिनों में देश के मध्य भागों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की उम्मीद है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से पश्चिम एशिया संघर्ष पर साझा चिंताओं पर चर्चा की। संवाद और कूटनीति से समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर ईरान और ओमान के विदेश मंत्रियों से बातचीत की। 11वें रायसीना डायलॉग का नई दिल्ली में शुभारंभ। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर स्टूब ने कहा, भारत भविष्य में विश्व व्यवस्था तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपने पद से त्यागपत्र दिया। नेपाल में आम चुनाव के लिए मतदान के बाद मतगणना शुरू। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 254 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।